ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अगर यह कल्याण का स्वरूप है और इसी स्वरूप में कल्याण होना है, तो फिर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ही इस स्वरूप में स्थित क्यों होना है? सदा के लिए क्यों नहीं? यह तो सदा का स्वरूप है। परमात्मा कहे और फिर तुम कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो बच्चे तुम्हें कल्याण नहीं चाहिए। परमात्मा चाहे तभी कल्याण करना है। अपना कोई संकल्प नहीं है क्या कल्याण का? इस स्वरूप को हम छोड़ कैसे सकते हैं? अगर इसमें कल्याण है और हम कल्याण चाहते हैं तो आप स्वयं विचार करो, क्यों आपको कहना पड़ता है हर कर्म में मूल स्वरूप में स्थित रहो? क्यों आपको कल्याण नहीं चाहिए? हर कर्म में निर्विघ्नता, सफलता नहीं चाहिए? क्यों कोई आपको बताए, क्यों कोई आपको याद दिलाए कि इस स्वरूप में स्थित हो जाओ? आपको नहीं चाहिए क्या? और अगर आपको चाहिए तो इस स्वरूप में आप जीवन की यात्रा कितनी करते हो? विचार करो, एक दिन ऐसे जीते जीते शरीर मर जाएगा, फिर तुम तुम्हारे सूक्ष्म स्वरूप में आ जाओगे, फिर सूक्ष्म शरीर में लगेगा हमें आत्मिक स्थिति में आना चाहिए था, मूल स्वरूप में आना चाहिए था, पर उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह यात्रा वहां की नहीं है। यह यात्रा तो यहां की ही है। जब आप स्थूल शरीर में हो तब आपको उस स्वरूप में आना है, यही यात्रा है। देखो बच्चे, जागृति रहेगी, चलते चलते संसार में इस ज्ञान सुनने वाले किसी अस्तित्व का शरीर छूट गया, फिर क्या लगेगा? काश मूल स्वरूप की प्रैक्टिस अच्छे की होती, हर कर्म में मूल स्वरूप लाया होता, तो आज मूल स्वरूप में शरीर छोड़ते हैं। समझ है? देखो, तुम तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी स्थिति देखो, तुम्हें क्या लगता है? खास करके संसार वाले भी देखें, तुम्हें क्या लगता है? जब तुम्हें मिला हुआ शरीर तुम छोड़ोगे तो तुम क्या बनकर छोड़ोगे? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, कोई गुरु, कोई शिष्य, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, या मूल स्वरूप आत्मा? किस रूप में शरीर छोड़ोगे? कोई ज्ञानी योगी, धारणायुक्त सेवाधारी, शरीर छोड़ने के वक्त आप कौन होंगे? अब स्वयं विचार करो, आप कौन होंगे शरीर छोड़ने के वक्त? देखो आपको क्या लगता है, आपकी स्टेट क्या होगी, स्थिति क्या होगी, कौन होंगे आप? या आपका नाम रूप होंगे, कोई पद पोजीशन होंगे, कौन होंगे आप? शरीर छोड़ते वक्त उसी के ऊपर बच्चे अगली सदगति निर्भर है। तुम कौन होंगे शरीर छोड़ते वक्त? कौन जी रहा है और कौन मरेगा, कभी सोचा है? बाप जानता है, सभी संसार की उलझनों में है, माया की उलझनों में है। रोज की तरह वाणी हो जाती है, वापिस अपने संसार में लग जाते हैं। वो नीलकंठ वर्णी जी कहते हैं ना कि स्वयं प्रभु भी आए तो अभी किसको पड़ी है, किसके पास समय है कि उनकी कोई बात सुने, उनकी आज्ञाओं पर चले? किसी को समय नहीं है, अपनी माया से किसी को फुर्सत नहीं है, सब उलझे हुए हैं अपनी माया में। किसी दिन पॉज लगाओ, पर लगाते नहीं तुम बच्चे, क्यों सोचते हो तुम्हें कुछ करना है इसके बाद? अगर मरना हो तो संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? अगर तुम्हें पता है आज का आखिरी दिन है, शरीर छोड़ना है, तो तुम क्या करोगे? तो किसने कहा तुम्हें आखिरी दिन नहीं है? समझ है बच्चे, तुम सोचते भी क्यों हो कि कुछ करना है? संभल कर रहो, यही माया है जो तुम इन सभी सोच में चले जाते हो। समझ की बातें। देखो मैं आपको कभी कहता हूं कि परमात्म वाणी से पहले, मुरली से पहले मौन में रहो, कुछ भी नहीं बोलो, कुछ भी नहीं सोचो, कुछ भी नहीं किसी को कहो। बस कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, वो निमित्त ने दे दी, चलो भाई नाश्ता करना है, बात समाप्त। संसार की कोई बात मत करो, पर तुम आपस में भी करोगे और मुझसे भी करोगे, जरूरी है। सुबह उठने से लेकर वाणी पूरी होने तक मौन में रहना पड़ता है, तब बच्चे शक्ति प्राप्त होती है। हाँ कोई इमरजेंसी बात है तो तुम जरूर करो, पर कोई बात वाणी के बाद भी हो सकती है तो वाणी के बाद कर सकेंगे, क्या जल्दी है? समझ की बातें सारी, पर बच्चे समझते नहीं हो। मौन रखें तो यात्रा हो जाएगी, पर बच्चे मौन के लिए समय नहीं है। मन में भी कुछ नहीं चलना चाहिए, वाणी पूरी होने तक कुछ नहीं। किसी को किसी बात की आवश्यकता है तो पहले से क्लियर करके रखे हर बात, क्यों किसी को पूछकर किसी का मौन भंग करना है? समझ की बातें। अच्छे संसार की बातों में उलझो मत, अपने में उतरो, उलझो मत, अपने में आओ, अपने में बैठो। जो भी कर्म करने हैं मौन में करो, कम से कम आवाज में करो, इशारों में हो सकते हैं तो इशारों में करो। पर बच्चे मौन में चलो, आवाज सुनने से या आवाज करने से आत्मा हलचल में आती है, खो जाती है, भटक जाती है। आत्मा साइलेंस में है, शांति में है। समझो इन बातों को। पानी का जो नल होता है ना, बेसिन में नल होता है, उसकी आवाज भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है मुंह धोने जाए तो पानी की आवाज भी ना आए। इतना साइलेंस बाबा को लगता है। संसार की कोई भी आवाज मुझे पसंद नहीं है, ध्यान में रखना। बिल्कुल मुझे साइलेंस लगता है। आप भी उसी अवस्था में आओ, साइलेंस। क्यों आवाज में उतरना है? आवाज से परे जाओ। वो इंटरव्यू याद है निर्मल शांता जी की? वो कहती थी ना कि हम कभी जूते पहनकर जोर जोर से चलते थे तो मम्मा कहती थी आहिस्ते चलो, आवाज नहीं करो। ये संस्कार बाप का है। चप्पल की भी आवाज बाप को पसंद नहीं है, बर्तनों की भी आवाज बाप को पसंद नहीं है। केवॉस है बच्चे, डिस्टर्बेंस है। कोई भोजन करने बैठा है तो चम्मच की भी आवाज पसंद नहीं है हमें। बच्चे सुबह उठने से लेकर वाणी पूरी होने तक बस मौन में रहो और परिवर्तन देखो। मौन समझ की बात है सारी। मौन में यात्रा करो, देखो क्या होता है। शांति। और जब तक वाणी पूरी नहीं होती, परमात्म वाणी, कृपा करना संसार की कोई बात नहीं करना। किसी की भी बुद्धि को संसार में मत लेकर जाओ, बोझा चढ़ेगा। क्योंकि बच्चे बुद्धि एक बार संसार में गई फिर वापस लाने में बहुत समय लगता है। इतना आसान नहीं है बुद्धि का वापस आना, क्योंकि उसे आदत है संसार में जाने की। व्रत रखो, समझ की बात है। न संसार देखना है, न संसार सुनना है, न संसार के बारे में कुछ बोलना है, सोचना भी नहीं है। तुम सुबह उठकर आते हो, रात से जो जैसे पड़ा है रहने दो। क्यों देख रहे हो उसे, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? तुम्हें जो चाहिए, चाय नाश्ता गाढ़ा बनाने के लिए कुछ पहले से तैयार रखो, पर दूसरे बर्तनों को भी नहीं देखो। अनुभव करो कभी एक दिन का कि सुबह उठने के बाद न संसार के बारे में सोचना है, न चिंतन करना है, विजन, न कोई संस्कार इमर्ज करना है, न बोलना है, न सुनना है, न देखना है, संसार सब जैसे के वैसा पड़ा रहने दो। कुछ नहीं देखो और ऐसे ही यात्रा करते परमात्म वाणी सुनो और उसके बाद अपनी स्थिति देखो। तुम जिसे देख रहे हो जो ठीक नहीं है वो कल से नहीं है, देखना ही था ना तो कल देखते, आज क्यों सुबह सुबह देख रहे हो? अभी ये पट है, ये कल से है, तो आज इसे क्यों बदलना है? रहने दो जैसे कि वैसा, कुछ भी हिलाओ नहीं। बच्चे, जब तुम सुबह उठते हो तो वहां से बस स्वयं के बारे में सोचो, मूल स्वरूप के बारे में सोचो, आत्मा कल्याण के स्वरूप के बारे में सोचो। क्योंकि बच्चे, एक बार वाणी पूरी हो गई फिर तो संसार तुम्हारे माथे पर है ही है, यज्ञ का। फोन कॉल वालों को फोन कॉल्स अटेंड करने, ईमेल देखो, पोस्टिंग करो, अपलोड करो, किचन संभालो, यज्ञ की सेवाएं देखो, ये है ही है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये रात तक, रात लाइट बंद करने तक संसार, तुम्हारे पास थोड़ा सा समय होता है सुबह उठने से लेकर वाणी पूरी होने तक, वो भी संसार में मत लगाओ। उतना सा समय भी किसी ने संभाला तो भी बहुत ऊंची स्थिति को पाएगा वो। किसी में जाना नहीं, सुबह उठने से लेकर वाणी होने तक जो निमित्त है वो कॉमन इंस्ट्रक्शंस देंगे, बाकी किसी में नहीं जाना है। कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, नहीं जाना है, वो हर किसी की अपनी मर्जी। तुम्हें अपने में रहना है, अनुभव करके देखो क्या बदलाव होते हैं, क्या परिवर्तन आता है। समझ की बातें हैं सारी। बच्चे, तुम समझते नहीं हो, समझो। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो। कल की मुरली में वो एक महावाक्य था, देखो, विश्व का कल्याण करने वालों को इस संसार में रस नहीं आता, सुना, आनंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता ये संसार उन्हें। तुम देखो, तुम्हें अच्छा लगता है यह संसार, विचार करो अपने से। देखो बच्चे, संसार संसार है, संसार की कोई बात अगर तुम्हें अच्छी लगी तो आत्मा बुरी लगने लगेगी। मैं नहीं कहता संसार से नफरत करो, पर अपने से प्यार करो, यही मैं कहूंगा। समझ है बच्चे? उस दिन की मैं राह देख रहा हूं जब न रहने के लिए घर होगा, न खाने के लिए अन्न होगा, न पहनने के लिए अनेक वस्त्र होंगे, एक ही वस्त्र जो पहना है, कोई व्यवस्था नहीं होगी। मिट्टी पर पत्थर पर सोना है, कोई तकिया नहीं, कोई चादर नहीं। फिर तुम भगवान को अच्छे से याद करोगे, फिर तुम अपने में ही बैठोगे। मनुष्य आत्मा को भगवान जितना देता गया, वो आत्मा उससे उतनी दूर होती गई, उतनी दूर हुई। इसलिए वापस कल्याण के लिए ड्रामा सब छीन लेगा, तब आत्माएं नजदीक आएंगी। सांसारिक सुख शांति हर आत्मा को परमात्मा से दूर करती है। संसार है, संसार में चलने वाले बच्चे वाणी तो सुन रहे हैं, पर वो करना क्या चाहते हैं? संसार ही ठीक, आत्मा को ठीक नहीं करना चाहते, संसार को ठीक करना चाहते हैं। संसारी जो है, इसलिए संसारियों का कल्याण नहीं हो पाता। वो कितना भी पुरुषार्थ करे, दुआ संसार के लिए ही मांगेंगे, नौकरी ठीक हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, घर परिवार ठीक रहे, सब ठीक रहे, धन ठीक रहे, पुत्र पौत्र ठीक रहे। भक्ति मार्ग में हर स्तोत्र में यही है, धन संपत्ति पुत्र पौत्र समृद्धि सब ठीक रहे। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ आत्मा ठीक रहे, आत्मा का कल्याण हो जाए, कहीं पर भी नहीं है। संसार वालों की चाहना क्या है? संसार। मेंढक क्या चाहता है? तालाब का कुएं का पानी ठीक रहे ताकि मैं जिंदा रहूं। मेंढक की कोई और आश नहीं होती। मेंढक कभी नहीं सोचता कि इस कुएं के बाहर, तालाब के बाहर परमात्मा की रचना कितनी सुंदर है, जरा देखें, उसका शुक्रिया करें। नहीं, संसार एक कुआ है और संसारी मेंढक हैं जो उसमें फंसे हैं, और कुछ भी नहीं। समझ की बात है। देखो बच्चे, इसीलिए संसार के बारे में, संसार के बारे में कम से कम सोचो, और अगर जरूरत नहीं है ना तो बिल्कुल नहीं सोचो, दिमाग खराब हो जाएगा बच्चे, क्योंकि सारा संसार मायावी है, तमो प्रधान बन चुका है। तुम जरा भी सोचोगे ना, वो तमो प्रधान था, वो तमो प्रधान ऊर्जा तुम में प्रवेश होगी, सिर दर्द शुरू हो जाएगा, तकलीफ शुरू हो जाएगी। समझ की बात है बच्चे? इसलिए तुम इससे दूर रहो, संसार से। हाँ, जो संसार करना है करो, निमित्त रूप में करो, इसमें खो नहीं जाना। कितना भी बड़ा संसार बनाया, फिर भी दो चार रोटी ही खाओगे। कितना खाओगे बच्चे? एक ही पलंग पर सोओगे, भल सोने का पलंग हो, ऐसे तो नहीं ना एक रात में 10 पलंग पर सोओगे। कितने भी घर बनाए फिर भी एक ही कमरे में सोओगे, रहोगे, उठोगे, बैठोगे। समझ की बातें, होश में आ जाऊं, जागृत हो जाऊं, इस संसार के बारे में सोचना बंद करो, मत सोचो, बिगड़ जाओगे। दुर्गति की ओर यात्रा होगी बच्चे। तुम हमेशा एक विचार करना, जहां तुम्हें संसार को लेकर चिंता आती है वह सिर्फ एक विचार करना, वहां अगर तुम्हारा पार्ट नहीं होता तो उस घड़ी वहां तुम नहीं होते तो सोचना पड़ता, देखना पड़ता, बोलना पड़ता, तो तुम क्यों समझ रहे हो कि तुम हो? संसार से मुक्त हो जाओ। मैं तो ज्ञान देकर भी ज्ञान से भी मुक्त रहता हूं, परमात्म वाणी चलाकर वाणी से भी मुक्त रहता हूं, भूल जाता हूं मैं मैंने क्या ज्ञान दिया, क्यों याद रखूं? मेरे काम का है क्या? मेरे काम का तो ज्ञान है नहीं ना, तो मैं ज्ञान को याद क्यों रखूं? क्या मिलेगा मुझे याद रखें? समझ की बात है। इसलिए मैं सभी को कहता हूं, कोई भी आए, फोन करे, पूछे, किसी भी प्रश्न का उत्तर उसे चाहिए, जाओ मुरली सुनो, वाणी सुनो। हम उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि हम तो ज्ञानी है नहीं। मुरलियों में ढूंढो, कहेगा कौन सी मुरली, ढूंढो, वो तुम्हारा भाग्य, खोजो मुरलिया, सुनो वाणिया बाबा की। हम कहाँ से बताएं, हम तो आत्मा हैं, हम कौन सी मुरली आपको बताएं कि इस मुरली से सुनो, उस मुरली से सुनो। रेगुलर मुरली सुनो बाबा की, परमात्म वाणी, वहां से करो अपना कल्याण। समझ की बातें। देखो बच्चे, संसार से दूर रहो, अपना कल्याण चाहते हो तो संसार से दूर रहो। तुम चिंताएं बहुत करते हो, उस कारण चिंतन नहीं हो पाता। देखो बच्चे, चिंताओं से दूर रहो। तुम्हें चिंता है आत्मिक स्थिति की? किसी को है तो जरा हाथ उठाओ, मूल स्वरूप की, याद की, सकाश की, हाथ उठाओ, किसी को होगी तो। तुम्हें चिंता सिर्फ संसार की है, देह, देह के संबंध, देह की व्यवस्था, वस्त्र, बस उसी की चिंता है। तुम उसी में खोए हुए हो बच्चे, अपने में उतरो। अगर कल्याण चाहते हो तो संसार को भूलो। कल विधि बताएं, मूल स्वरूप जिसमें कोई देह भी नहीं है, मन बुद्धि संस्कार भी नहीं, बस ऐसी अवस्था में सदा बैठे रहो। मत सोचो बच्चों, वो तुम्हें मलिन कर देगा संसार। जिसका संसार है, जिसका यज्ञ है, वो परमात्मा जाने, जब वो कहेगा तब हम करेंगे। हाँ, उसने कुछ कहा है तो करेंगे, सोचना नहीं है। सोचने से बच्चे माया आ जाएगी। समझ की बातें हैं, सारी होश में आ जाऊं। मूर्ख होते हैं ना, वो बाहरी संसार ही सोचते हैं। जैसे कोई आपको पूछेंगे सवाल, कभी पूछा नहीं किसी ने कि अगर बाबा है तो इतने बाल क्यों बढ़ाए, दाढ़ी क्यों बढ़ाए? ये मूर्ख लोग, इनको उत्तर दिया ना फिर भी कुछ और प्रश्न निकालेंगे। और समझदार क्या कहेगा, नहीं बाकी बातें जाने दो, पर इनका ज्ञान सुनकर ये लगता है ये परमात्मा है, ये कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी बातें तो मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, ऐसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। समझ की बात है, संसार है, भटकाएगा, ध्यान दो, भटको मत, परेशान हो जाओगे। जब तक अपनी मंजिल पर पहुंचे नहीं हो, मायावी भटकन बहुत आएगी, तुम उनसे अपनी संभाल करो, संभाल करो। जैसे दो तीन दिन पहले कैसे सबकी परीक्षा ली मैंने, भटक गए संसार में, समझ की बातें हैं। क्या कहा है मैंने, आगे चल के ऐसी बहुत परीक्षाएं लूंगा, कितना भटकोगे, कहां तक भटकोगे, इन सब बातों में बच्चे अपने में बैठो, ड्रामा फिक्स्ड है, जो होना है हो रहा है और तुम उसी में भटके हो, उलझे हो। एटलीस्ट परमात्म वाणी होने तक इस माया में मत जाओ, भटको नहीं। सुबह उठने से लेकर परमात्म वाणी होने तक वो तुम्हारे कल्याण का समय है, उसे कल्याण में लगाओ, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। समझ की बात है बच्चे, कल्याण में लगाओ, किसी में भी नहीं जाओ, खुश में आओ बच्चे, भक्ति मार्ग में। किसी के पूजा का समय होता है, कोई 3:30 बजे पूजा के लिए बैठ जाता है, 5:30 बजे तक, सूर्योदय होने तक, देखो उस 2 घंटे में वो कुछ सांसारिक बात करता है क्या, कहीं जाता है, किसी का फोन अटेंड करता है, कुछ सांसारिक करता है क्या, नहीं करता। तो तुम यह समझो, परमात्म वाणी होने तक तुम्हें अपने कल्याण की बात करनी है, न तुम भटको न किसी और को भटकाओ। ध्यान दो बच्चे, तुम अपना भी कल्याण करो और सबको भी कल्याण अर्थ कल्याण करने के लिए सहयोग दो। समझो इन बातों, हाँ कुछ इमरजेंसी है मैंने कहा ना तो बता दो, पर मोस्टली नहीं होते बच्चे। तो अपने में बैठो, अपने में रहो। बाबा को देखा है, बाबा की अपनी स्टेट होती है, सुबह आता है, उसे पसंद नहीं है किसी से कोई बात करना, कोई उसे कोई बात सुनाए उसे पसंद नहीं है। तुम अपने कार्य पूरे करो और सीधा यहां आ जाओ, बड़ा आनंद आएगा। मैं एक सच बात कहूं आपको, मुझे सुबह उठकर शिव प्रभात कहना भी पसंद नहीं, नहीं पसंद बच्चे। न तुम मुझे कहो न मैं तुम्हें कहूंगा, हम मौन में रहते। मुरली में कहता हूं ना सभी को, हो गई ना, मुरली के बाद भी चाहे तो पर्सनली कहता हूं, पर मुरली से पहले शांत, मुझे देखो भी नहीं, एक दूसरे को भी देखो नहीं, परिवर्तन देखो क्या होता है। एक ही दिन करके कल तुम करो और मुझे अनुभव सुनाओ, अनुभव सुनाना। यह भी नहीं कहना बाबा आए, नहीं, शांत रहो तुम, एकदम शांत सभी। मैं तो रोज आता हूं वाणी के लिए, मौन में रहो, तुम अपने कार्य पूरे करो, आओ बैठो तपस्या में बैठो, शांत एकदम, बड़ा आनंद आएगा। तुम्हारी जो सेवा है ना, कोई कैमरा संभालता है तो वो संभालो, लैपटॉप संभालता है वो संभालो, साउंड सिस्टम संभालते हो वो संभालो, तुम किसी और को इशारा भी नहीं करो। कभी किसी बात को लेकर हम रुकते हैं, फेड करना पड़ता है, मत करो इशारा उसे, फेड करना है नहीं करो, वो करे ना करे, वो जाने बाबा जाने, इतना तुम्हें मौन में रहना है। दो चार सेकंड रुकेंगे और, पर तुम अपना मौन क्यों तोड़ रहे हो? तुम अपनी सेवा संभालो, अपने में रहो। देखो कल्याण का सूत्र बता रहा हूं, बड़ा आनंद आएगा। एक ही दिन में तुम्हें बहुत दिव्यता महसूस होगी, बस एक दिन, कुछ नहीं देखो। पर बच्चे तुमने कुछ देखा, मन बुद्धि चली, संस्कार इमर्ज हुए, सब सत्यानाश हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं देखो। उठो, अपनी सेवा करो, नहाओ धो सेवा करो, आओ बैठो अपनी तपस्या में बैठो, वाणी सुनो। एक बार वाणी पूरी हो गई फिर तुम मुक्त हो, फिर बच्चे जो परिवर्तन होना था ना, सुबह से लेकर वाणी पूरी होने तक जो दवाई तुम्हारे अंदर जानी थी, जो असर होना था हो गया, अभी तुम फ्री हो। मैं कहता हूं वाणी के बाद रात भर, रात तक तुमने बातें की बड़बड़ की तो भी चलेगा, करनी नहीं है, पर मैं बता रहा हूं, मैं वाणी तक की बात कर रहा हूं, मौन की अनुभव करो। फिर वाणी के बाद तुम दिन भर संसार में गए तो भी चलेगा, जाना नहीं, पर मैं कह रहा हूं, पर वाणी तक मौन, कुछ नहीं देखना है, बस अपने को देखना है। देखो कैसे लगता है, किसी को कुछ नहीं कहना है, किसी की कोई बात सुननी नहीं है, सुननी नहीं मना, सुनने जाना नहीं है। हाँ कोई इंस्ट्रक्शन किसी ने दिया है, श्रीमत दिया है तो सुननी है, वो करना है, कुछ बोलना ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं, कुछ सुनना नहीं, अपनी तपस्या में रहना है। सुबह उठने से लेकर अपने अपने कमरों में विश्राम करते हो तो तुम अपने साथी सहयोगियों के साथ हो, देखना भी नहीं एक दूसरे को, नहीं देखना है, बात तो बिल्कुल नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी एक दूसरे से, शिव प्रभात भी नहीं करना है, जो कुछ करना है ना वाणी के बात करेंगे एक दूसरे को भी, उससे पहले नहीं, अनुभव करके देखो। हाँ कोई बात है किसी चीज की जहां किसी का कोई नुकसान हो सकता है, कोई गिर सकता है, किसी को कुछ लग सकता है, तो उसे बताओ यहां थोड़ा संभल कर जाना, वो केयर करो, बाकी बातों में नहीं जाना है, समझ रहे हैं? ये छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं। कोई जा रहा है नहाने, गीजर का पानी बहुत गर्म हुआ है, तो तुम्हारी जवाबदारी है बताना, थोड़ा संभल कर यूज़ करना, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, माना किसी को कोई दुख ना मिले। ऐसे नहीं कि तुमने मौन रखा है उस कारण किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं गई, उस कारण किसी को कोई दुख दर्द मिला, तो बच्चे वो तो पाप हो गया। ऐसे नहीं, बैलेंस करना पड़ता है हर बात में। मोस्टली ऐसे सब होता नहीं, बस शांत रहो, अपने में रहो। तुम्हारे बाजू में कौन बैठा है उसे भी नहीं देखना वाणी पूरी होने तक। तुम्हारी नजर या तो तुम पर या मुझ पर रहे। देखो बच्चे, यह सुबह का समय जो है ना, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। सुबह का समय, सुबह जो एक सेवा होती है, नाश्ता बनाते हो उतनी ही करो, बाकी न बर्तन न कपड़े कुछ भी नहीं, कुछ भी किसी में भी नहीं जाना है। वो भी वही करेंगे जिनकी सेवा है, बाकियों को उसमें नहीं जाना है। शरीर को जो चाहिए उतना ही सुबह के लिए दे दो, बाकी शरीर की जो एक्स्ट्रा जरूरतें सेवाएं उसमें नहीं जाओ, भटक जाओ। याद है पहले मैं कहता था, फिर रूटीन को मैंने चेंज कर दिया। सोचना भी नहीं, अपने में बैठना है, अनुभव करो। सुबह का समय बहुत अनमोल समय है, इसमें कोशिश करो अपने में रहने की, परिवर्तन की अनुभूति हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। उस अपने में रहने में कोई कुछ ना करे ना, न आत्मिक स्थिति, न याद, न सकाश, न मुरली सुनी पढ़ी, न वाणी, कुछ भी ना करो तो भी तुम्हें परिवर्तन की अनुभूति होती जाएगी। करो तो और ही ज्यादा होगी, पर कुछ ना करो तो भी परिवर्तन की अनुभूति होगी। समझो इन बातों को, समझ के बातें हैं सारी, इसी में बच्चे कल्याण है। होश में आओ, कोशिश करो इस प्रकार से यात्रा करो, कैसे लगता है देखो। यह यात्रा पहले करो सुबह की, फिर हम नुमा शाम की यात्रा करेंगे। ऐसे नहीं कि दोनों यात्राएं एक साथ ले लिए हैं, नहीं, पहले यह यात्रा करो, एक यात्रा अनुभव करो कैसे लगता है। संसार वाले वो तो सुबह उठने से लेकर संसार के पीछे ही भागते हैं। अभी उन्हें क्या कहूं मैं कि यह यात्रा करो, कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगी यात्रा, क्योंकि संसार तुम्हें दौड़ा रहा है, भगा रहा है सुबह से लेकर रात तक। परमात्म वाणी सुनने के लिए भी मुश्किल से समय निकल पाता है संसार वालों का। उस समय में भी बैक ऑफ द माइंड क्या क्या नहीं होता, समझ की बातें हैं। संसार में रहकर संसार को भूलना इतना आसान नहीं है, नहीं हो पाता, क्योंकि संसार में चलते सदा स्मृति है, मेरा 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 मेरा, अभी मेरा नहीं भूला है, मेरा बाबा कैसे बनेगा, तुम किसी भी कमरे से किसी भी कमरे में जाओ, स्मृति सदा रहती, मेरा घर, हमारा घर, हमारा आंगन, हमारी गाड़ी, हमारे कपड़े, हमारी व्यवस्था, समझ की बात है। किसी और के घर में जाते मेहमान के रूप में, झोपड़ी भी क्यों ना हो, सुकून क्यों मिलता है पता है? कारण एक ही है, वहाँ मेरा कहने के लिए कुछ है नहीं जो परेशान करे। उस झोपड़ी में नीचे जमीन में बैठकर भी सुकून मिलता है, क्योंकि वो जमीन भी अपनी नहीं है, वो झोपड़ी भी अपनी नहीं है, सब किसी और का है। इसलिए किसी और के घर में जाने के बाद अच्छा लगता है। संसार की हालत यही है, तुम्हारे घर दूसरे लोग आएंगे कहेंगे बड़ा अच्छा लगता है आपके घर में, आने के बाद तुम किसी और के घर जाओगे उन्हें कहोगे बड़ा अच्छा लगता है आपके घर में, आने के बाद सुकून मिलता है। उसे सुकून मिल रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हें सुकून मिल रहा है उसके घर में, अजीब बात है। वजह सिर्फ मेरापन है, वहां मेरापन नहीं है इसलिए सुकून मिल रहा है, तुम्हारे घर में मेरापन है इसलिए परेशान हूं। उसके घर में तुम बैठे हो, कितनी भी कीमती कांच की वस्तु टूट जाए तुम्हें कोई फर्क पड़ता है नहीं, अपने घर में बैठे हो, जरा कुछ हुआ आधी जान बाहर, समझ की बात है। इसलिए बच्चों सब त्यागना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। तुम जिससे परेशान हो उसी को पकड़ के बैठे हो, तुम ध्यान से देखो, वही घर, वही व्यवस्था, वही वस्त्र अलंकार, वही सब कुछ जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो, और फिर तुम कहते हो परेशान हो गए। गुलाब का फूल है, नीचे कांटे, तुमने ऐसे जोर से पकड़ा है। दिखने में गुलाब का फूल दिख रहा है संसार, शायद तुम्हारे हिसाब से सुगंध भी अच्छी है, पर जिस तरीके से तुमने पकड़ा है, कांटे चुभेंगे नहीं तो क्या होगा, समझ की बात है। हर किसी के जीवन में जो दुख कष्ट है वो बस मेरेपन की वजह से, बाकी कोई कष्ट का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं है, सिर्फ मेरापन। तुम ध्यान से देखो तुम्हें दुख कहां से मिलता है, तुम्हारे मेरेपन से बस, बाकी कहीं और से दुख आता ही नहीं है, समझ की बात है। होश में आ जाओ, किसी और के जीवन में कुछ भी हुआ, कोई मरा कोई जिया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जीवन में जरा कुछ हुआ तो तुरंत परेशान होते हो, मेरापन। इसी मेरेपन से बाहर आओ, यही परमात्मा कह रहा है, मेरापन छोड़ो, कुछ भी मेरा नहीं है। समझ है? देखो बच्चे विचार करो, मेरापन, किसी भी बात में मेरापन नहीं रखूं। अभी इस बात से हमें एक बात याद आई, एक दिन मैं आपकी परीक्षा लूंगा, आपके अपने अपने प्लेट्स हैं, किसी भी प्लेट में भोजन परोस के मैं किसी को भी दे दूंगा, मुझे देखना है कौन कहता है अरे ये मेरी प्लेट नहीं है, वो मेरी प्लेट है, वो मेरी थाली है, देखना है मुझे। उस थाली में भी मेरापन आ गया। बच्चे जरा तुम्हें कोई चीज मिली तुरंत तुम उसमें मेरापन डाल देते हो, बस बच्चे वही दुख की माया है जहाँ से दुख आ जाता है। परमात्मा ने दिया है, किसी में भी दे दे, उसकी अपनी मर्जी है, तुम क्यों चेंज कर रहे हो? वो कुछ चेंज कर रहा है अंदर देकर, पर तुम्हें मनमत से चेंज करना ही होगा। अरे ये मेरी थाली नहीं, ये किसी और की थाली, ये फलाने की थाली, ये ले लीजिए, ये मेरा कप नहीं, किसी और का है, ले लो, हो जाता है तुरंत। पर तुम्हें समझ में नहीं आता, जब उसने दिया है तो बहुत कुछ कर रहा है। हाँ, तुमने आपस में दे दिया तो फिर चेंज करो, पर उसने दिया है ना, समझ है बच्चे? कहीं पर भी मेरा पर नहीं रखो बच्चे, इस संसार में कहीं पर भी मेरा पर नहीं रखो। क्यों? यह मैं तुम्हें समझाता हूं, समझो इसे ध्यान से। कहीं पर भी किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी स्थान में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी अस्तित्व में तुम्हारा मेरापन है तो तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर उसमें अटका है, उतनी तुम्हारी ताकत कम होगी, तुम कमजोर हो जाओगे। जितने ज्यादा मेरापन उतना तुम कमजोर होंगे, फिर सारे सूक्ष्म शरीर लेकर तुम्हें जो कल्याण का कार्य करना है, स्व कल्याण का, वो नहीं कर पाओगे। यही एक वजह है जिस कारण परमात्मा कहता है मेरापन एटलीस्ट संगम पर नहीं रखो, बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कली जितना रखना है रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, यहां छोड़ो, किसी पे भी नहीं। गद्दी पर सोते हो, भल बाबा ने आपको अपनी अपनी गद्दी दी है, अपने अपने बेडशीट्स है, तकिया है, वो क्यों दिया है? ताकि ऊर्जा चेंज ना हो, पर मेरापन नहीं रखना है उसमें कभी नहीं। कल रात को तुम्हें मिली है सोने के लिए, आज बाबा किसी और को भी निकाल के दे सकता है, ये नहीं कहना है मेरी है, नहीं। आपको याद है मैंने आपको सिखाया है कि किसी कुर्सी से उठो तो भी एक सेकंड के दृष्टि से अपनी ऊर्जा वापस लो, वो अपना सूक्ष्म शरीर वापस ले रहे हो। कटिंग शॉपिंग कर रहे हो तो वहां वो जो शॉपिंग पैड है, छुरी है, उसके साथ तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर है, उसे वापस लो। समझो इन बातों को। चप्पल भी अपनी पहनते हो जो तुम्हें मिली है यज्ञ की, कहीं गार्डन में घूम कर आए चप्पल निकाली, ऊर्जा वापस लो। और अगर ऐसे चप्पल निकाली ना तुमने वहां पर, तुम कभी भी आके वहां सेंस करना, उस चप्पल पर खड़ा तुम्हें अपना सूक्ष्म शरीर महसूस होगा, सेंस करके देखना, हाथ लगाकर तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा महसूस होगी, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वहां है। रात को सोते हो, बेड से वापस ले लो, बाथरूम जाते हो, नहा के आए वापस ले लो, ऊर्जा वापस लेना, माना अपना सूक्ष्म शरीर वापस लेना। साइकिल कंप्लीट करना, माना अपना सूक्ष्म शरीर वापस लेना। इसलिए मैं कहता हूं साइकिल कंप्लीट करो, हर सेवा की, हर कार्य की, चक्र पूरा करो हर कार्य का। पर तुम कहते हो सॉरी बाबा वो रह गया, वो सकाश में जाना था ना, सकाश का समय हुआ था इसलिए वो रह गया। सूक्ष्म शरीर वहां छोड़कर तुम सकाश क्या करोगे वहां पर? अजीब बात है, सूक्ष्म शरीर वहां पड़ा है, सब्जी काट रहा है, बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, कोई सेवा कर रहा है, भोजन कर रहा है, कई गार्डन में है, और तुम सोच रहे हो सकाश करोगे, तुम कैसे करोगे? समझ के बात है बच्चे। मैंने कभी बंद तो नहीं किया ऊर्जा वापस लेना, तो तुमने क्यों किया? यही दुर्भाग्य है बच्चे, यही माया है, इसे ही दुर्भाग्य कहते हैं। तुम्हें नहीं पता तुम कितने सूक्ष्म शरीर अपने खोते हो सारे दिन भर में, और फिर तुम परेशान होते हो, क्योंकि आने वाली जो समस्या है, परिस्थिति है, उसका समाधान करने वाला जो सूक्ष्म शरीर था वो कहीं और रह गया। उससे लड़ने वाला, उस परिस्थिति से लड़ने वाला जो सूक्ष्म शरीर था वो कहीं और है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए जहां जहां तुम्हारा मेरापन है, वहां तुम्हारा खुद का एक सूक्ष्म शरीर अटका हुआ है। अपने को मत फंसाओ। फिर वो रिश्ते में भी क्यों ना हो, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, किसी भी रिश्ते में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अटका हुआ है बच्चे। इसलिए उन्हें दर्द होता है, तुम्हें दर्द होता है। वो दर्द तो वहां हुआ ना, तुम्हें क्यों हो रहा? क्योंकि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वहां पर है, इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। कोई वस्तु टूट गई, तुम्हें दर्द होता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उस वस्तु में था। तुमने अपने आप को कहां कहां फंसा कर रखा है, वहां से निकालो बच्चे। जब तुम सब तरफ से निकल जाओगे, बिना पुरुषार्थ के तुम खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, मौज में रहोगे। पुरुषार्थ तो बच्चे आत्मिक स्थिति अपने को पाने के लिए, याद विकर्म विनाश करने के लिए, सकाश कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए, इन सब का खुशी मौज आनंद का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे सारे सूक्ष्म शरीर अगर तुम में है, तो तुम बिना पुरुषार्थ के भी आनंदित रहोगे, खुश रहोगे, मौज में रहोगे। तुम्हारे सूक्ष्म शरीर खोए हुए हैं, इसलिए तुम दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। और तुम क्या सोचते हो, पुरुषार्थ करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। पुरुषार्थ का और सुख का कोई संबंध नहीं यहां पर। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। कोई बच्चा है अपने लौकिक में, उसकी कोई समस्या है जिससे वो परेशान है, स्कूल जाकर हिस्ट्री की अच्छी पढ़ाई करने से उस समस्या का समाधान होगा क्या? साइंस की अच्छी पढ़ाई की स्कूल जाकर उस बच्चे ने, तो उस समस्या का समाधान मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। वो समस्या अलग कारण से, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अलग बात के लिए है, उसी प्रकार से यह पुरुषार्थ अलग बात के लिए है, और तुम्हारी जीवन अलग रूप से चल रही है। तुम सोचते हो इस पुरुषार्थ से तुम्हारी जीवन ठीक हो जाए, जैसे वो बच्चा सोच रहा है हिस्ट्री की सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ूंगा, साइंस अच्छे से पढ़ूंगा तो घर की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पागलपन है ये सब। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, उसका और तुम्हारे घर की परिस्थिति का क्या संबंध है? उसी प्रकार से यह पढ़ाई और तुम्हारी जीवन, इसका कोई संबंध नहीं है। पढ़ाई अलग है, जीवन अलग है, जीवन ड्रामा है, पढ़ाई बच्चे कल्याण है। समझ की बात है, तुम दोनों को मिक्स मत करो। हाँ, इस पढ़ाई से तुम्हारी जीवन अच्छी बनेगी, कहाँ? सतयुग में, यहां नहीं। हाँ, उस पढ़ाई से उस बच्चे की जीवन अच्छी बनेगी, कब? जब उसकी अच्छी नौकरी, अच्छा धंधा होगा, पढ़ लिख कर कोई बड़ा बनेगा, तब उसके लौकिक में आने वाली सारी समस्याओं का वो समाधान कर पाएगा। क्योंकि पढ़ लिख के बड़ा हो गया, समझ है बच्चे, तो देखो तुम्हारे अपने सूक्ष्म शरीर कितने खोते हो, कहाँ कहाँ खोते हो, मेरापन नहीं रखो। चाय भी पी ली, उस प्याले से अपनी ऊर्जा निकाल ली, प्याले में ऊर्जा क्यों छोड़नी है, भले तुम्हारा ही प्याला है, ऊर्जा क्यों छोड़नी है, समझ की बात है। बस तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे अंदर रहे, तुम सुखी रहोगे। कोई भी हो, कितना भी विकर्मी हो, कितना भी कुकर्मी हो, उसकी ऊर्जा अगर उसमें है तो वो सुखी है, ऐसा ड्रामा बना हुआ है। ऊर्जा खोने से ही दुख आता है, सूक्ष्म शरीर खोने से ही दुख आते हैं। इसलिए बच्चे अपने सूक्ष्म शरीरों को संभालो, वो तो क्या तुरंत तैयार होते, जैसे मेरा कहा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वहां गया, मेरा कहते ही। समझो इन बातों को। इसलिए इस संसार में बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देखो तुम्हारा मेरापन मैंपन कहाँ कहाँ है, समझ की बात है बच्चे सारी। बच्चे बस मेरेपन से संभाल करो, मेरा ज्ञान भी नहीं, मेरा योग भी नहीं, मेरी धारणाएं भी नहीं, और मेरी कोई सेवा भी नहीं, मेरा बस बाबा, किसी में भी नहीं अटको, बस मेरेपन से निकलो, सुखी हो जाओगे। मेरेपन से निकल गए तो विश्व का कल्याण कर पाओगे। मेरा कुछ भी नहीं, होश में आ जाओ। बताओ नाम रूप सहित तुम मेरे हो या सितारे रूप में तुम मेरे हो? सितारे रूप में, यही सत्य है। नाम रूप तो इस जन्म में तुम्हें मिला है पार्ट बजाने के लिए। होश में आ जाऊं, मेरापन सब तरफ से हटाऊं। बच्चों इस बात को बहुत सीरियसली लेना। मैं लंबे समय से सबको कह रहा हूं अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं रखो, घर नहीं रखो, बहुत बच्चे कर भी रहे, किया भी है, अपने नाम पर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अटका है। अपने नाम पर कुछ ना हो, कुछ भी ना, समझ की बात है बच्चे। दुनिया में इतने पदमपति है, अरब खरब पति है, जिन्होंने क्या क्या नहीं बनवाया है संसार में, कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, माना अरबों खरबों के मालिक है वो। पर कभी सुना है किसी ने अपने लिए अलग से शमशान बनाया है, कब्रिस्तान बनाया? कितने लगेंगे, इतने से पैसे लगेंगे, उसी कब्रिस्तान में उसका शरीर जाता है, उसी शमशान में उसका शरीर जाता है। बनाना चाहिए ना पदमपति को अपना अलग शमशान, कि मेरे शरीर के मरने के बाद मेरा शरीर यहाँ जलाया जाएगा, ये शमशान सिर्फ मेरा है। क्यों नहीं बनाते? भूत बनकर वही भटकेगा उस शमशान में, मेरा बनाया तो उस कब्रिस्तान में मेरा बनाया तो वही भटकेगा। कितना भी पदमपति हो, कॉमन कब्रिस्तान, कॉमन शमशान, वंडरफुल बात है। उसके पास क्या नहीं, पूरे देश को शमशान बनवा के दे सकता है, पूरे देश को कब्रिस्तान तैयार करके दे सकता है जगह खरीद कर। तो अपने लिए एक प्लॉट नहीं खरीद सकता इतना बड़ा राजा? एकड़ एकड़ उसकी जमीन है, तो एक हाथ एकड़ अपने लिए नहीं ले सकता? जा खुद का शमशान या कब्रिस्तान बनाए, नहीं होता ये सब, भटक जाएगा, परेशान हो जाएगा। समझ के बात है, मेरा पर नहीं रखो कहीं भी, समझ के बात है। बस इतना सा काम करो तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हारे मन में जो व्यर्थ और निगेटिव संकल्प चलते हैं वो कहाँ से आते पता है? जहाँ जहाँ तुम्हारा मेरापन है उनमें से कहीं से आ रहे। किसको समय है तुम्हें व्यर्थ संकल्प देने के लिए? कौन सी माया को समय है तुम्हें निगेटिव संकल्प देने के लिए? वो सब तुम्हारे मेरेपन से आ रहे। तुम्हारे विचार कौन से चलते हैं? जो तुम्हारे बुद्धि में है उसी के चलते हैं। तुम्हारे बुद्धि में क्या है? जहाँ तुम्हारा मेरापन है वही है ना। तो तुम्हारे उस सूक्ष्म शरीर से, तुम्हारे इस सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के रूप में विचार आ रहे, विजन्स आ रहे, संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। सब इस माया का खेल है, तुम्हारी माया। बस मेरेपन की माया से निकलो। मेरा कुछ भी नहीं इस संसार में, और अगर है मेरा तो बस एक परमात्मा, एक शिव बाबा। कहने के लिए सभी कहते हैं, पर जब प्रैक्टिकल बात आती है तो सब नापास हो जाते हैं। संसार में बैठे हुए बच्चे भी कहेंगे, हाँ बाबा यही धारणा है हमारी, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो संसार में क्यों बैठे हो? मेरा बाबा है ना, तो बाबा के पास बैठना चाहिए, बाबा के साथ चलना चाहिए, संसार में क्यों हो? झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा बाबा, मेरा बाबा छोड़कर सब तुम्हारा मेरा है। बस वो एक ही मेरा नहीं है, उस एक के लिए ही तुम सदा झूठ बोलते हो मेरा बाबा। मुश्किल कोई मिलेगा जिसको मैं कहूंगा, ए बच्चे कह मेरा बाबा, और फीलिंग आएगी सच्ची मेरा बाबा। बाकी सभी को कहूँ मेरी कुर्सी, मेरा टेबल, मेरा फलाना, फीलिंग प्रॉपर आएगी, इमोशंस भी आएंगे, भाव भी होगा, क्योंकि वहाँ मेरापन है। बस बाबा में भाव नहीं जन्मता, मेरा बाबा नहीं जन्मता भाव, क्योंकि बाबा तुम्हारा है ही नहीं। बाकी सब में तुम्हारा भाव जन्मता है, दो कौड़ी के चम्मच में भी भाव तुम्हारा जन्मता है, ये मेरा चम्मच है। ऐसे कहते हैं जैसे अभी वो चम्मच नहीं दिया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, ऐसा भाव होता है। मेरा चम्मच है भाई वो, उसका कहने का ढंग देखो, अरे मेरा चम्मच है वो, जैसे इसका सारा खजाना ही कारून का खजाना लूट लिया, ऐसा चम्मच के लिए कहता है मेरा चम्मच है। बच्चे होश में आओ, यही मेरापन बस परमात्मा के लिए हो, ऐसे नहीं होगा। जब सब तरफ से मेरापन निकलेगा तब दिल से निकलेगा मेरा बाबा। कहीं भी मेरापन है तुम कितना भी कहो, मेरा बाबा दिल से नहीं निकल सकता, पॉसिबल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे होश में आ जाओ, देखो तुमने अपने आप को फंसाया है मेरा 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 करके, अपना एक सूक्ष्म शरीर अटकाया है, लटकाया है। बाकी तुम्हारी मर्जी, निकालना हो तो निकालो अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर, नहीं निकालना है तो नहीं निकालो, तुम्हें जो ठीक लगे करो, मर्जी तुम्हारी, जैसे अच्छा लगे करो। मेरापन संसार में रहा ना तो भूत बनकर आओगे, और ज्ञानी भूत नहीं बनते, हाँ ध्यान में रखना। इस मार्ग पर चलने वाले जो है उनका मेरापन अगर संसार में कहीं रहा तो वो भूत नहीं बनते, वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं, भूतों के भी बाप। संभल कर रहना, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो, और जिस बात में तुम्हारा मेरापन रहेगा वही तुम्हारा एक भूत का स्वरूप, ब्रह्म राक्षस का स्वरूप बनेगा, और द्वापर के बाद वही स्वरूप तुम में प्रवेश होगा। और जिस बात के लिए तुम्हारा मेरापन रहा किसी वस्तु पदार्थ में, उसी बात के लिए तुम लूट मार करोगे, मार काट करोगे राजा बनकर। परिणाम बहुत भयंकर है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए इस संसार में किसी भी बात में कहीं भी मेरापन रखना नहीं। तुम यह नहीं समझना यह सिर्फ संगम पर ही होगा, संगम पर समाप्त होगा परमधाम जाने के बाद। नहीं, जितने मेरेपन रहे उतने तुम्हारे स्वरूप तैयार है द्वापर के बाद तुम में प्रवेश होने के लिए। उसी फ्रिक्वेंसी में, उसी एनर्जी लेवल में, उसी वाइब्रेशंस के, और जैसे तुम में प्रवेश होंगे बूस्ट हो जाएगा। समझ है? जिस बात के लिए मेरापन रहा वही तुम लूटोगे, मार काट करोगे। समझो इन बातों को। कर्म की गुह्य गति तुम जानते नहीं हो। मैंने उस दिन कहा ना आपको, आपका संस्कार कितना बना है शांति का? कोई कहता है हाँ बाबा मैं शांत स्वरूप बनाऊं, कितने थप्पड़ मारने के बाद अशांति जागृत होगी लगातार? 5 थप्पड़ के बाद अशांति जागृत हुई। अब समझ जाना 5 ही जन्म का संस्कार है, 5 जन्म का शांति का संस्कार बना है। 84 थप्पड़ मारने के बाद भी शांत रह सकते हो? लगातार 84 थप्पड़, संस्कार बनाना पड़ता है उतना बड़ा, वरना एक समय में खत्म हो जाएगा संस्कार तुम्हारा। किसी दिन ड्रामा होगा तो संस्कारों की बात करूंगा दोबारा। देखो तुम्हारे संस्कार कितने बने, कहते हो प्रेम स्वरूप हूं, कहां तक चलोगे? कितनी गालियां देने के बाद गाली निकालोगे? कितना अपमान करने के बाद अपमान आएगा बाहर? संतों को देखा, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी, संस्कारों की परीक्षा देनी पड़ेगी। संतों ने दी, क्या नहीं किया उनके साथ, फिर भी अपनी शांति नहीं छोड़ी, अपना प्रेम नहीं छोड़ा, अपना सुख देने का स्वभाव संस्कार नहीं छोड़ा। ये है संस्कार तुम्हारे बने हैं। तुम्हारे तो एक थप्पड़ में संस्कार खत्म हो जाएंगे, एक जन्म के भी ढंग के नहीं बने। तुम्हारा जरा अपमान किया ऊपर नीचे हो जाते हो। एक जन्म का भी संस्कार नहीं बना है तुम्हारा शांति का, और तुम्हें 21 जन्मों की शांति चाहिए, कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। संस्कार कहाँ पर है? तुमने इस ज्ञान मार्ग पर चलते जो संस्कार बनाए हैं उन संस्कारों की चेकिंग करो, कब खत्म हो जाएंगे? कौन सा तूफान आए तो यह संस्कार समाप्त होगा, चेक करो, उतना ही रिटर्न मिलेगा तुम्हें। समझ की बात है। बहुत से मूर्ख इस मार्ग पर आए हैं ज्ञानी बनने के लिए, बहुत से महामूर्ख आए हैं इस मार्ग पर योगी बनने के लिए। बहुत मुश्किल थोड़े आए हैं अपने आप को परिवर्तन करने के लिए। यह परिवर्तन का मार्ग है, ज्ञानी योगी बनने का मार्ग नहीं है। ज्ञानी बनकर क्या करोगे, क्या करोगे बताओ जरा? योगी बन गए और परिवर्तन ही नहीं किया, क्या करोगे उस योग से? समझ की बात है। यह परिवर्तन का मार्ग है। देखो, चेक करो अपने आप को, सारी ऊर्जा अपने में लगाओ और हर सेकंड अपने आप को परिवर्तन करते रहो, वरना बच्चे जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। संगम ऑलरेडी समाप्त हुआ है, 90 साल खत्म हुए, 10 साल बचे 100 साल में से। अभी 10 साल में जो करना है करो परिवर्तन, बाकी मैं क्या कहूँ, तुम्हारी अपनी मर्जी। उस 10 साल में भी किसके शरीर की आयु कितनी बची है वो जाने, कोई यह ना समझे उसके पास 10 साल हैं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, परिवर्तन पर ध्यान दो। परिवर्तन कब होगा? पहले मेरापन हटाओ संसार से, सब तरफ से, फिर बच्चे परिवर्तन की स्मृति आएगी। तुम परिवर्तन होना चाहते हो, ये झूठ है तुम्हारा। जब सब तरफ से मेरापन हटेगा और वो सारा मेरापन बस तुम में आएगा, तुम्हारे सारे सूक्ष्म शरीर तुम में आ जाएंगे, फिर जब संकल्प उठेगा मुझे परिवर्तन होना है, वो सच्चा संकल्प है। वापिस वही कह रहा हूँ, अपनी ऊर्जाओं को सदा रिटर्न लेते रहो, मेरेपन को हटाकर जल्द से जल्द अपने सारे सूक्ष्म शरीर वापस लो। आज भी तुम्हारे लौकिक घर में तुम्हें तुम्हारा कमरा याद है, तो उस कमरे में कोई व्यक्ति भी जा रहा है ना, तो उसकी ऊर्जा तुम पर यहाँ असर कर रही है, ध्यान में रखना। वो व्यक्ति जिस स्टेट में है, वो ऊर्जा उस कमरे के द्वारा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में, वहाँ के सूक्ष्म शरीर में जा रही, और वहाँ के सूक्ष्म शरीर की कॉर्ड यहाँ जुड़ी होने के कारण वो ऊर्जा यहाँ आ रही, और तुम्हारे मन में, बुद्धि में, संस्कारों में नेगेटिव वेस्ट इमर्ज हो रहा है। संभल कर रहो, अपनी ऊर्जा को समेटो। इस मार्ग पर चलने से पहले मेरापन त्यागना पड़ता है। पहली धारणा क्या है? फकीर बनो। फकीर का अर्थ क्या है? मेरापन कुछ नहीं, मेरे जीवन में मेरा कुछ नहीं, उसे कहते फकीर। देखो बच्चे बने हो, संभल कर रहना, वरना बच्चे गड़बड़ हो जाएंगे। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, गफलत ना करो। अभी सन्यासी बने हो तो जो वस्त्र मिले हैं उसमें भी मेरापन ना रहे, जो कमरा स्थान मिला है उसमें भी मेरापन ना रहे, जो व्यवस्था रही मिली है उसमें भी ना रहे, कहीं पर भी ना हो, कहीं पर भी अपने देह में भी मेरापन ना हो, देह में भी, फिर बच्चे कल्याण होगा। बाल झड़ रहे, झड़ने दो, उसकी देह है। सफेद हो रहे, होने दो, उसकी देह है। देह बीमार हो रही, उसकी देह है। नींद नहीं आ रही, उसकी नींद, उसकी देह, उसकी आत्मा, वो जाने। जल्दी उठ गए, उसकी देह, उसकी आत्मा, उसकी जागृति, सब उसका है, हमारा तो कुछ नहीं है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। योग लगा तो भी उसकी मर्जी, नहीं लगा तो भी उसकी मर्जी, वो जो चाहे। कल परसों भी कहा ना, हर श्वास वो चलाता है, अनुभव करो। समझ की बात है, सब तरफ से मेरापन हटाओ, अपनी सारी ऊर्जा अपने में लाओ, कल्याण अपने आप शुरू हो जाएगा, अपने आप। तुम्हें समझ देने की आवश्यकता नहीं है, बस श्रीमत देने की आवश्यकता है, समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे सारे सूक्ष्म शरीर तुम में है तो ना समझी का कारण समझने वाला तुम्हारा सूक्ष्म शरीर कहीं और है। समझ है बच्चे, इसलिए मैं कहता हूँ किसी को समझाने में मत जाओ, तुम्हारा अपना सूक्ष्म शरीर खो जाएगा। फिर जब तुम्हारी समझ की बारी आएगी तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, ध्यान देना। इसलिए यहाँ इस मार्ग पर मैं सबको कहता हूँ, किसी को कोई ज्ञान नहीं देना है, जो उसे चाहिए वो बाबा से ले लेगा, वाणी में बाबा दे देगा। ध्यान दो बच्चे, अपनी ऊर्जा अपने में लाओ और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपनी ऊर्जा अपने में रखो। सदा भूलो मत, मेरी शिक्षाएं तुम बीच बीच में भूल जाते हो, फिर जीवन दुखी हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई धारणा छोड़ो, बंद करो। तुम अपने मन मत से बंद करते हो, छोड़ देते हो, फिर दुखी हो जाते हो। फिर वापस मैं जागृत करता हूँ, पता नहीं वापस तुम कब तक कहाँ तक चलोगे, तुम जानो। कल्याण हो सभी का। ओम शांति।
रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा, पदम कीर्ति, पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा,
ओम शांति।
वा 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 वा, वा जामा वा, वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।